प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्ययन में हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 11 से 24 पद तक। तो आइए आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद को निकाल लीजिए। इस प्रकार से लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। मेरे प्रियो, यह पद मनुष्य को दिए गए वरदानों का उल्लेख नहीं करता है, जबकि यह सच है कि वह ही है जिसने मनुष्य को वरदान दिए हैं। पौलुस के कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि प्रभु उन मनुष्य को जिन्हें उसने वरदान दिए हैं चुनकर कलीसिया में रखता है। अब इन मनुष्यों को कलीसिया में रखने का उसका उद्देश्य है पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये प्रतिभाशाली मनुष्य कलीसिया को दिए गए हैं कि वह सिद्धता प्राप्त करे, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। यह स्वार्थ परायण सा लगता है, परंतु मुझे विश्वास है कि इसका अर्थ समझना कठिन नहीं है। इस संसार में कलीसिया का उद्देश्य क्या है? वह सिद्ध होकर उन्नति करे। शब्द है उसने पर यह अत्यधिक बल दिया गया है। प्रभु यीशु स्वयं ही कलीसिया को वरदान युक्त मनुष्य देता है कि वह सिद्ध हो। प्रभु यीशु ही है जिसके पास अधिकार है और वही है जो वरदान देता है। उसने कलीसिया को प्रेरित दिए। प्रेरित वह था जिसने पुनर्जीवित प्रभु को देखा ही नहीं, उसके द्वारा सीधी एवं व्यक्तिगत नियुक्ति पाए हुए था कि प्रेरित होने की सेवा करे। उससे विशेष प्रेरणा प्राप्त होती थी। यही कारण था कि पौलुस गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 और 12 पद में दावा करता है, पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसको उसने मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। जी हाँ, यह पद अपनी प्रकृति के कारण वर्षों पूर्व कलीसिया से समाप्त हो गया था। भविष्यद्वक्ता अन्य पत्रियों के समान यहाँ भी भविष्यद्वक्ता से अभिप्राय है नए नियम के भविष्यद्वक्ता। ये वे मनुष्य थे जिन्हें प्रेरितों की नाई विश्वास की शिक्षाओं की विशेष अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। आप देखिए इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में, आज की कलीसिया में ना तो प्रेरित रहे और न ही उस अर्थ में भविष्यद्वक्ता रहे। वे वर्षों पूर्व विलोप हो गए हैं, परंतु उसकी कलिसिया में अब भी है। कलिसिया इस पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी है। वे उस सेना में हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में है, अर्थात वे आज भी हमारे मध्य हैं। क्या हम इफिसियों को लिखी पत्री का अध्ययन नहीं कर रहे हैं? इसे किसने लिखा था? प्रेरित पौलुस ने। यद्यपि वह स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ है, वह हमारे मध्य भी उपस्थित है। वह देह में अनुपस्थित है, परंतु प्रभु यीशु के साथ वह अब भी एक प्रेरित है और कलीसिया का सदस्य है। सुसमाचार सुनाने वाले उस समय भ्रमणशील प्रचारक होते थे। पौलुस एक सुसमाचार सुनाने वाला था। वे आज के प्रचारकों के सदृश नहीं थे जिन्हें कमिटी या संस्था प्रचार अभियान में बाहर भेजे। वे नए नए क्षेत्रों में जाते थे और परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन एवं अगुवाई में अकेले ही सेवा करते थे। रखवाले, ये लोग भेड़ों के चरवाहे होते थे। उपदेशक, ये लोग विश्वासियों को निर्देश देते थे। इस वरदान का उल्लेख रोमियों की पत्री 12 अध्याय उसके 7 पद में, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 28 और 29 में और पहला तीमोथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 2 पद में है। परमेश्वर ने कलीसिया को ये सब लोग दिए कि कलीसिया सिद्ध हो जाए और निषेधाज्ञाओं का पालन करे। मेरे प्रियो, कलीसिया को संसार के सामने मूर्ख नहीं बनाना है, उसे संसार के सामने अज्ञानी नहीं दिखना है। इन सब को मिलकर कलीसिया को तैयार करना है कि वह विश्वासी सेवा कार्य करे और मसीह की देह का निर्माण करे। हम कलीसिया के पासवान को सेवक कहते हैं, परंतु यदि आप विश्वासी हैं तो आप भी उतने ही जिम्मेदार सेवक हैं। पास्टर को विशेष वरदान प्राप्त है कि वह परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे कि उसके सदस्य सेवा का काम करें। उन्हें सदस्यों को बाहर जाकर घर घर भेंट करना है, गवाही देना है, परंतु आज हमारी कलीसिया का विचार इसके बिल्कुल विपरीत है। डॉक्टर लुइस पेरी सॉफर ने एक समय जब उन्होंने प्रचार आरंभ किया था तब स्वयं ही गाते बजाते थे और प्रचार भी करते थे। वह एक अति उत्तम संगीतकार थे और एक महान प्रचारक भी थे। उस समय उनके पास एक स्त्री आई और कहने लगी, डॉक्टर, आप अत्यधिक परिश्रम कर रहे हैं, आपको गीतों का गाना और प्रचार करना दोनों काम एक साथ नहीं करना है, आप किसी और को प्रचार के लिए क्यों नहीं रखते? प्रचार करना उनका वरदान था और वह उसके द्वारा मनुष्यों को सेवा के लिए तैयार करते थे। यहां मुझे कहने की अनुमति दें कि कलीसिया में एक ही व्यक्ति को सब वरदान प्राप्त नहीं होते हैं, अतः आपके पास्टर और सेवक से सब कामों की आशा आप न रखें, यह धारणा न रखें कि उसके पास अनेक वरदान है। उसका काम है कि सेवकाई के निमित्त कलीसिया के सदस्यों को तैयार करे। मैंने किसी कलीसिया की पत्रिका में एक लेख पढ़ा था जिसे आपको मैं सुनाना चाहता हूं। सदियों से प्रचार कार्य का मुख्य उत्तरदायित्व पादरी को उठाना होता रहा है। अयाजकीय वर्ग को न तो प्रचार के लिए बुलाया जाता था और न ही इस काम के लिए उस पर विश्वास किया जाता था। कलीसिया के महत्वपूर्ण विकासों, संभवतः इस शताब्दी का एकमात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण विकास में से एक है, अयाजकीय गतिविधियों का नवीनीकरण अर्थात नवीकरण और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई समझ की अयाजकीय मनुष्य भी ऐसे एक कार्य के लिए बुलाए गए जो याजकीय सेवा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। एल्टन ड्रूबल्ड ने कहा था, जागृति ने साधारण मनुष्य के लिए बाइबल खोल दी है, एक नई जागृति सेवा कार्य साधारण मनुष्य के लिए खोल देगी। मेरे प्रियो, मैं इस लेख को संपूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूं और अति प्रसन्न हूं कि अयाजकीय मनुष्यों को सेवा में अधिकाधिक सक्रिय होते देख रहा हूं। आज अनेक युवा विश्वासी गवाही देने के काम में सहभागी हो रहे हैं, अतः उन्हें शिक्षण की आवश्यकता है। वे मेरे कार्यक्रम को सुनते हैं क्योंकि उनकी समझ में मैं उन्हें शिक्षा दे सकता हूं। विश्वासियों को शिक्षण की आवश्यकता है कि वे सेवा कार्य में सक्षम हों। कुछ लोग प्रचारकों द्वारा मेरी शिक्षाओं को दोहराते हैं या दोहराना देख अप्रसन्न होते हैं। मुझे एक महिला ने फोन करके कहा कि वहां एक प्रचारक रूथ की पुस्तक से मेरी शिक्षा को काम में ले रहा था, वरन उदाहरण भी मेरे ही दे रहा था। उसने कहा, मेरे विचार में यह बहुत बुरी बात है, आप उसे तुरंत रोकें। मैंने उससे पूछा, क्या उसकी शिक्षा अच्छी है? उसने कहा, वह अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा, यह की स्तुति करो, मैं सदा यही चाहता था कि कोई तो हो जो मुझसे अच्छा काम करे। अतः आप देख रहे हैं कि मेरा उत्तरदायित्व है मनुष्यों को सेवा के लिए तैयार करो। मेरे प्रियो, मुझे एक प्रचारक ने लिखा कि वह मेरा एक उपदेश अपने प्रचार में काम में लेना चाहता था, अतः उसे अनुमति चाहिए। मैंने उससे उत्तर दिया, मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि आप मेरे भाई मुझसे अच्छा काम करें, सामग्री काम में लें। जी हाँ, हमें मसीह की देह का निर्माण करना है। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, अपने पास्टर से यह आशा न रखें कि वही सब काम करे। वह वहां आपके प्रशिक्षण के लिए है कि आप सेवा कार्य करें और आपकी कलीसिया सिद्ध हो जाए। हमें अज्ञानियों का समुदाय नहीं होना है, हमें उत्तम स्पष्ट बुद्धिमान से पूर्ण गवाही इस संसार में रखना है। मेरे विचार में आज कलीसिया का सबसे बड़ा पाप है सामने कुर्सी पर बैठे आराधक का अज्ञान। वह परमेश्वर का वचन नहीं जानता है, यह एक त्रासदी है। मैं ऐसे नाव में बैठ करके यात्रा करना नहीं चाहता जिसका कप्तान कलीसिया के सदस्य के विश्वास और वचन के ज्ञान से अधिक नहीं हो। मेरे प्रियो, नाव तो चल जाएगी परंतु कुछ भी हो सकता है। आज कलीसिया की यही दशा है। सब विश्वासियों को परमेश्वर की वचन की शिक्षा पाना आवश्यक है कि वे सेवा कार्य में दक्ष हो जाएं। मेरे मित्रों, हम नाना प्रकार की एकता का वर्णन करते हुए पाते हैं, पौलुस कहता है, परमेश्वर ने कलीसिया को सिद्ध हो जाने के लिए अलग अलग पद भार पर सेवक नियुक्त किए। कलीसिया को संसार में प्रभु के गवाह होना है। अब आगे वह कहता है इफिसियों के पत्र 4:14 में, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। ध्यान दें, ताकि हम आगे को बालक न रहें। हमें निषेधाज्ञाओं के अधीन रहना है, हमें रोते हुए बच्चों के समान इधर उधर भागते नहीं रहना है। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया से कहा था कि वे अब भी सांसारिक हैं और वे मसीह में शिशु ही बने हुए हैं, अतः वे लज्जा का कारण है। मेरे अनुवाद के अनुसार, हमें प्रत्येक अन्य शिक्षा द्वारा पद भ्रष्ट नहीं होना है। यहां ध्यान दीजिए कि पौलुस रूपकों का उपयोग कर रहा है। वह सजीव दृश्य प्रदान करते हुए एक विश्वासी के शिशु होने के खतरों को दर्शा रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप किसी शिशु को हवाई जहाज चलाने के लिए नहीं बैठा देते हैं। मेरा बेटा जो चतुर और छोटा है परंतु इतना भी नहीं है, मैं उससे हवाई जहाज उड़ाने को नहीं दे सकता या ट्रेन चलाने के लिए नहीं दे सकता, बाइक चलाने के लिए नहीं दे सकता, वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। यदि बालकों को पानी का जहाज चलाने को दे दें तो जहाज विशाल समुद्र में दिशाहीन हो जाएगा और गोते खाने लगेगा। वे निराश हो जाएंगे, उन्हें जहाजी मतली होने लगेगी, वे भटक जाएंगे। यह परमेश्वर की संतान के भविष्य का संभावित परिदृश्य है। मेरे प्रियो, यहां रूपक में परिवर्तन आता है। मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों से, यदि आप एक बच्चे को जुआ खेलने बैठा दें तो चतुर जुआरी उन्हें लूट लेगा। सच तो यह है कि मेरा बेटा आज तो क्या 100 वर्ष तक का हो जाए तब भी मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वह ऐसी जगह पर जाए। नाना प्रकार के वरदानों से संपन्न विश्वासियों को कलीसिया में रखने का परमेश्वर का उद्देश्य है कि वे पूर्ण परिपक्व और सिद्ध हो जाएं। शिक्षकों को बाल विशेषज्ञ होना आवश्यक है। हम इफिसियों के पत्र 4:15-16 में आगे पढ़ते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। मेरे प्रियो, विश्वासियों को बालक ही नहीं रहना है परंतु प्रेम में सत्य की चर्चा करते हुए मसीह में हर बात में विकास करना है। विश्वासी को प्रेम में सत्य का पालन करना है अर्थात उसे सत्य से प्रेम रखना है, उसमें जीवन निर्वाह करना है और उसी को होठों पर लाना है। प्रभु यीशु सत्य है और विश्वासी को अपनी छोटी जीवन नया हर बात में मसीह की ओर लक्षित करके चलना है। प्रभु यीशु उसका चुंबक और चुंबकीय ध्रुव है, उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिसमें सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर। ध्यान दे, विश्वासियों की देह की तुलना शरीर से की गई है और वह मसीह की देह कहलाती है। मेरे प्रियो, देह को सिर अर्थात मसीह से आदेश ही नहीं पोषण भी प्राप्त होता है। इसमें तालमेल तब उत्पन्न होता है जब प्रत्येक अंग सिर से प्राप्त आत्मिक पोषण के अनुसार कार्य करता है। शरीर में आंतरिक ऊर्जा भी होती है जिसके द्वारा वह अपना नवीकरण करता है। इसी प्रकार आत्मिक देह अपना नवीकरण प्रेम के द्वारा करेगी। आइए हम आगे देखें नए मनुष्य या नए सृष्टि की निषेधाज्ञा। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसके 17 से 19 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। मेरे प्रियो, हमने नए मनुष्य का प्रदर्शन और नए मनुष्य की निषेधाज्ञाएं देखी हैं। अब हम नए मनुष्य की निषेधाज्ञा देखेंगे। मेरे विचार में विश्वासी के जीवन में कुछ आपत्तिजनक या नकारात्मक बातें भी हैं जिन पर ध्यान देना हमारे लिए अति आवश्यक है। इन बातों पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। हमने आधुनिक नैतिकता की चर्चा की है जो पाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मसीह में स्वतंत्रता है परंतु पाप करने की आज्ञा नहीं है। नए मनुष्य के लिए निषेधाज्ञाएं वे नहीं जो कुछ मनुष्य निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कहीं नहीं देख पाता कि स्त्रियां श्रृंगार न करें। मैं एक ऐसे समूह को जानता हूं जो वर्षों तक स्त्रियों की आत्मिकता को उनके श्रृंगार से आंकता था। मैंने ऐसी महिलाओं को भी देखा है जो श्रृंगार नहीं करती थी। देखने में ऐसा लगता था कि वे चलती फिरती लाश हैं। विश्वासियों को परमेश्वर ने जो भी दिया है या विश्वासियों को जो भी मिला है उसे यथासंभव संभाल कर रखना है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे रंग पोत कर रखें, तथापि कुछ विश्वासी इन मानव निर्धारित निषेध आज्ञाओं को बलपूर्वक लागू करते हैं जो धर्मशास्त्र में नहीं पाई जाती है। मेरे प्रियो, नए मनुष्य के जीवन में निषेधाज्ञा उसके वचन का इनकार है। आज सकारात्मक विचारों की अत्यधिक चर्चा है परंतु हमें नकारात्मक विचारों की भी कुछ आवश्यकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि अदन की वाटिका में मुख्य आग नकारात्मक थी? उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 पद में, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। 10 आज्ञाओं को ही देख लीजिए, वे नकारात्मक हैं परंतु अत्यधिक भलाई की हैं। इसी प्रकार इफिसियों की पत्री में हम कुछ नकारात्मक वाक्य देखते हैं जो परमेश्वर की संतान के लिए निषेधाज्ञाएं हैं। हमें अन्य जातियों का सा चाल चलन नहीं रखना है, यह एक नकारात्मक बात है। यहाँ पर पौलुस विश्वासी के आचरण की व्यवहारिकता की चर्चा करता है। उसने पद 1-3 में इसकी चर्चा आरंभ तो की थी, परंतु वह कलीसिया की एकता का विषय बीच में ले आया। अब वह अन्य जातियों के जीवन और मन फिराव के पूर्व इफिसुस के विश्वासियों के जीवन का चित्रण प्रकट करता है। आपको स्मरण होगा कि अध्याय 2:11-12 में वह कहता है कि वे भटके हुए थे, वे आशा से रहित थे, परमेश्वर से रहित परदेशी थे और पाप में जीवन निर्वाह कर रहे थे। यह उनकी दशा थी, यह आज भी एक खोए हुए मनुष्य का सजीव चित्रण है। पौलुस अन्य जातियों के जीवन के 4 पक्षों का उल्लेख करता है जो खोए हुए मनुष्य के जीवन के उद्देश्य की निस्सारता और उन्माद प्रकट करते हैं। मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। जीवन का निस्सार भ्रम जिसमें मनुष्य सोचता है कि पाप संतोषदायक है। ओह, कितने मनुष्य ऐसा जीवन जी रहे हैं। मैं उन युवक और युवतियों के लिए दुख मनाता हूं जो अनैतिक जीवन शैली को बढ़ावा देने वालों के शिकार होते हैं। मुझे एक युवती ने बताया कि उसने 2 बार गर्भपात करवाया है, अर्थात 2 हत्याएं की हैं, और वह अविवाहित है। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर द्वारा स्थापित आनंद का जीवन नहीं है जो उसने अपने संतान के लिए रचा है। यह एक खोए हुए मनुष्य का जीवन है। मन की अनर्थ रीति पर चलना यह जीवन का निस्सार भ्रम है। शराब पीना और एक उदाहरण है। एक शराब की आदि महिला ने हमारे रेडियो कार्यक्रम को सुनना आरंभ किया और वह शराब से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका कहना है, ओह, शराब पीना समझदारी और शालीनता प्रतीत होती है, यह कैसी त्रासदी है। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, अर्थात खोए हुए मनुष्य ने नैतिक मूल्यों की समझ ही खो दी है। आज ठीक ऐसा ही हो रहा है, नैतिक मूल्यों का खोया जाना। वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। जी हाँ, यह प्रभु यीशु से रहित प्रत्येक मनुष्य का चित्रण है। यह आदम का विद्रोह है जो उसके प्रत्येक संतान में आ गया है। आज के मनुष्य का यह कैसा चित्रण है, वह सोचता है कि वह जीवन का सुख भोग रहा है। मुझे एक मनुष्य ने बताया कि उसने क्लब की एक रात में अपने 1 सप्ताह की कमाई गंवा दी। क्यों? अच्छा समय बिताने के लिए। ऐसा मनुष्य परमेश्वर के संबंध के अनगिनत लाभों से अनभिज्ञ है। इसका परिणाम मन की कठोरता है। वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। अनैतिकता में बने रहने के कारण वे बुराई के प्रति सुन्न हो जाते हैं। आज ऐसे अनेक मनुष्य हैं, वे सहानुभूति से रहित हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे अधिकाधिक लुचपन और लालसाओं में गिरते जाएंगे। यह विषाक्त चक्र पाप में अधिक गहरा जाने की लालसा उत्पन्न करता है। कहने का अर्थ यह है कि अनैतिकता की गहराइयों को नापने की लालसा करना। पाप में डूबा मनुष्य पाप से कभी संतुष्ट नहीं होता, वे पाप के लिए त्याग दिए जाते हैं। रोमियों के पत्री 1 में जो लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके लालसाओं और अशुद्धताओं के लिए छोड़ दिया। मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं इफिसियों के पत्री 4:20-21 में लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। यहाँ अन्य जातियों के जीवन के साथ विषमता दिखाई गई है। यदि कोई यीशु के वचनों पर ध्यान नहीं देता तो यीशु उसका उद्धार करता नहीं होगा। प्रभु यीशु चरवाहा है और उसकी भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं। यदि आपने उसकी वाणी नहीं सुनी है तो आप उसकी भेड़ नहीं है। मेरे प्रियो, अन्य जातियों को उनके पुराने मनुष्यत्व से कौन बदल सकता है? उन्हें क्या करना है? उन्हें प्रभु यीशु की वाणी सुनना है, उन्हें उससे शिक्षा ग्रहण करना है। वे जो उसकी भेड़ नहीं है उसकी वाणी नहीं सुन पाएंगे। यीशु में सत्य है, उसके सांसारिक जीवन की नकल करना तो संभव नहीं, परंतु विश्वासी के लिए वह एक आदर्श जीवन है। यीशु एक प्रवर्तक है, वह पृथ्वी पर जीवन जीने का एक प्रतिमान है। वह हमारे लिए मृत्यु के द्वार से होकर गया, अतः विश्वासियों के लिए अंधकार में रहने, अज्ञानी होने और अंधे होने का स्थान नहीं है। अंत में हम आगे पढ़ते हैं इफिसियों के पत्र 4:22-24 पद में, कि तुम पिछले चाल चलन की पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। मित्रों, हमें पुराने मनुष्यत्व को वैसे ही उतारना है जैसे हम पुराने वस्त्र को उतारते हैं और नए वस्त्रों की नए मनुष्यत्व को पहन ले। यह कार्य मनुष्य के अपने प्रयास से संभव नहीं है और न ही प्रभु यीशु की नकल करने मात्र से संभव होगा। हम शिशुओं की नाई हैं जो स्वयं अपने कपड़े नहीं बदल सकते। मैं अपने बेटे को सिखाता हूँ कि कैसे कपड़े बदलने हैं। हम विश्वासी स्वयं कुछ करने के स्थान पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वरन हमें प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यह काम तो हमारे लिए पहले ही किया जा चुका है। रोमियो की पत्री में हम देख चुके हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह यीशु के साथ क्रूस पर मर गया। रोमियो के पत्र 6:6 में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। मेरे प्रियो, अब हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ में इसे त्याग देना है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इस जीवन में यह पुराना स्वभाव कभी समाप्त होगा। हम पुराने मनुष्यत्व के स्वभाव से मुक्ति नहीं पाते, परंतु हमें इसमें वास नहीं करना है, अर्थात यह हमें अपने वश में करने ना पाए। दूसरी ओर हमें नया स्वभाव प्राप्त है जो पवित्र आत्मा द्वारा नया जीवन पाने का परिणाम है। मसीह में प्रत्येक मनुष्य एक नई सृष्टि है। हमें इस नए स्वभाव, नए मनुष्यत्व में जीना है। यह रोम की कलीसिया के लिखे महान संदेश का पुनरावलोकन है जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह मसीह यीशु की रोपित धार्मिकता है और हमारा प्रत्येक कार्य परमेश्वर के पवित्र गुण की समानता में होना है, क्योंकि हमें धर्मी ठहराया गया है और हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ उपस्थित हैं। हमारे सांसारिक आचरण हमारे इस स्थिति के अनुरूप होना है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे और आपको इसके विषय में सोचना है। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दिल में बसा के तुझको अपना बनाया है। यीशु अपने दिल में बसाया है, दिल में बस बसा के तुझको